प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
इस सप्ताह के हमारे श्रोता साथी हैं योगेश सारवा और इनसे बातचीत कर रही हैं मीनू सिंह।
सप्ताह के श्रोता, इस क्रम में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह आपके मन में उत्सुकता होगी कि आज कौन सा श्रोता अपनी आवाज के जरिए आपसे रूबरू होने वाला है। वो हिंदी फिल्मों में एक गीत है ना, वो कौन है, वो कौन है, तो उसका नाम भी हम बताएंगे। पर उससे पहले स्वीकार कीजिए मीनू सिंह का नमस्कार। तो हमारे आज के सप्ताह के श्रोता हैं ग्राम बन बघेरा राजनांदगांव के श्री योगेश सारवा। योगेश सारवा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
नमस्कार सभी अर्पा परिवार और आप सभी अर्पा के पदाधिकारियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। योगेश सारवा, ग्राम बन बघेरा जी राजनांदगांव से।
आपका प्यार भरा नमस्कार हम और हमारे सभी श्रोता साथी स्वीकार कर रहे हैं। और योगेश जी, हम और हमारे श्रोता साथी जानना चाहते हैं आपके बारे में, आप क्या करते हैं, आपके परिवार में कौन कौन है?
जी, मेरे परिवार में मेरा बड़ा लड़का है नीरज साहू और गुड़िया है अंजलि और मेरी मिसेस आशा सारवा और छोटा वाला नीलेश सारवा। और मैं पेशे से कृषक हूँ, साथ में पार्ट टाइम अपना LIC का भी काम करता हूँ, साथ में किसानी है, ये सब देखता हूँ मैं।
अच्छा, आपने शिक्षा कहाँ तक ली है?
मैं पुराना 10वीं किया हूँ मैडम जी, क्योंकि अभाव था, गरीबी थी, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ पाया
जी जी,
और इसलिए मैं 10वीं तक पढ़ाई किया हूँ। और बचपन से मेरे को आकाशवाणी से बहुत ही लगाव रहा है।
कि जो आपके बच्चे हैं वो किस किस क्लास में पढ़ रहे हैं, कि पहले जब आप पढ़ते थे उस वक्त की कंडीशन और आज की कंडीशन में गांव में क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं?
पहले टीचर्स बहुत कम हुआ करते थे जी, एक ही टीचर 3-4 क्लास को पढ़ाया करते थे। आज तो बहुत सी सुविधाएं हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से, बहुत से अच्छी अच्छी शिक्षाएं और आज बच्चे भी अच्छे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और पहले से बेहतर पढ़ाई। पहले तो बहुत टफ था और आज का इतना मतलब एडवांस हो गया है पढ़ाई, बच्चे खेल खेल में पढ़ाई कर लेते हैं
बहुत सरलता से, बच्चे बहुत सारी कठिन कठिन।
मेरे गांव वगैरह में मतलब मिडिल स्कूल है, वहाँ पे कबाड़ से जुगाड़ करके क्विज में छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान मिला है हमारे स्कूल के शिक्षिकाओं को और बहुत ही अच्छा मतलब उनका प्रयोग है, शिक्षा के प्रति अच्छा लगाव है। गाँव वगैरह शिक्षा के स्तर में काफी उन्नति कर रहा है।
अच्छा, ये कबाड़ से जुगाड़ में उन्होंने बनाया क्या था सर? बहुत अच्छी बात आपने बताई।
जैसे पुराने स्क्रेप होते हैं, जैसे खिलौने हो गए टूटे वाले, जैसे बच्चे लोग को मंगाते हैं घर से मैडम लोग, अब ये सामान लाना, डिब्बा लाना, ऐसा करके तो जुगाड़ बनाया है कबाड़ से जुगाड़। तो मधुलिका विश्वकर्मा मैम है, उन्होंने ऐसा नवाचार शिक्षा के माध्यम से किया है।
चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए इस्तेमाल में नहीं आती हैं, तो उनसे अगर कोई अच्छी चीज़ बनती है तो ये क्रिएटिविटी भी होती है और लोग सीखते भी हैं कि हर चीज़ को बर्बाद नहीं करना है, उसको फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत अच्छी बातें बताई आपके बच्चे। तो योगेश जी, और हम जानना चाहेंगे आपके बच्चों के बारे में, किस किस क्लास?
मेरा बड़ा लड़का नीरज साहू जो कि कभी पढ़ाई कर रहा है और फाइनल PG कर रहा है सामाजिक में, WMS कहते हैं उसे, सामाजिक क्षेत्र में पढ़ाई कर रहा है।
बहुत ही अच्छी।
मैं भी एक समाज का मुखिया और समाज में अपनी पहचान है और समाज की सेवा मैं भी अच्छी तरह से करता हूं और जिस तरह से मेरे पिताजी ने मुझे लोगों को मदद करना, समाज को आगे बढ़ाना, आप कोई भी समाज के हो
जी जी,
आप समाज के प्रति अच्छा सोचो, अच्छा विचार रखो, तभी आप एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता बन जाओगे। इसी तरह से मैं भी अपने बच्चे को सामाजिक दिशा में पढ़ाई करवा रहा हूँ।
ये बहुत अच्छा काम है कि आप जिस फील्ड से जुड़े हैं उस फील्ड में जो टेक्निकल नॉलेज है, कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या हम लाके अपने गाँव में कर सकते हैं, उस पर एक विशेषज्ञता आपका बच्चा हासिल कर रहा है जो निश्चित आप और आपके पिता के काम को आगे बढ़ाएगा।
आजकल स्कूलों में और बहुत ही कम नैतिक शिक्षा के ऊपर जोर दिया जाता है
जी,
तो नैतिक शिक्षा माँ बाप से और समाज से ही मिलता है। और शिक्षा तो ठीक है, मगर आपके पास नैतिकता नहीं है, व्यवहार नहीं है, तो शिक्षा कोई काम की चीज नहीं है।
जी सही कहा आपने, और ये सब अपने बड़ों से ही बच्चे सीखते हैं, और आप चूंकि उसमें लगे हुए हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो बेटे हैं वो आगे जाके बहुत सफल होंगे। और यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आपके गांव का नाम वन बघेरा है, सुनने में बड़ा प्यारा लग रहा है, वन भी है और बाघ भी है, तो हम आपके गांव के बारे में जानना चाहते हैं।
जी 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 जी, मेरा गांव वैसे जिला मुख्यालय राजनांदगांव से 16 किलोमीटर और दुर्ग जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर के बीचों बीच है। और चूंकि मेरे गांव के आसपास मैकल श्रेणी पर्वतमाला का थोड़ा सा 100-150 एकड़ में फैला हुआ है, और उसी के आसपास में वन चेतना केंद्र छत्तीसगढ़ शासन ने जंगल सफारी का वहां पर बढ़िया सा डेवलप किया हुआ है
जी।
और उसी के पास से मेरा गांव है। चूंकि पूर्वजों के कहना है कि बहुत सारे जंगल थे, बहुत सारे झाड़ियां थी, बड़े बड़े जानवर थे, इसलिए गांव का नाम वन वगैरह पड़ा, मतलब वन वन का अभ्रंश है वो
जी।
वन का वन है, इसलिए वन वगैरह मेरा गांव का नाम पड़ा है।
तो सारवा जी, जैसे आजकल बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि हाथी आ गए और उन्होंने फसल नष्ट कर दी, तो ऐसे जंगली जानवर भी आपके गांव में आते होंगे, तो उनसे सुरक्षा?
मेरे यहाँ जंगली जानवर तो आते नहीं है, मगर जंगली सुअर बहुत आते हैं।
अच्छा,
क्योंकि गांव से थोड़ा सा नजदीक है जंगल, 2-3 किलोमीटर का जंगल है, तो जंगली सुअर हमारे फसल को बहुत नुकसान करते हैं, और जैसे है हम किसान भाई उसको बचाने का प्रयास भी करते हैं।
जी जी,
फिर भी सभी के लिए जीव मात्र, सभी के लिए भगवान ने यहाँ पर व्यवस्था किया है, क्योंकि किसान है हम, तो सभी के लिए सोचते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फसल नुकसान होता है, क्या करेंगे, जंगली जानवर से उपाय तो है नहीं है, शासन अपने स्तर पे करती है मगर उसकी पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पाती, जो भी शासन की योजनाएं होती है
जी,
खुद को पहल करना पड़ता है।
जी जी, कुछ खुद को भी करना पड़ता है। तो आप जब इनको भगाते हैं या आपके गांव में वो आ जाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, कैसे, मतलब आवाज शोर या और कुछ प्रयास करते हैं? फेंसिंग लगा के रखा है आपने?
फेंसिंग तो रखते हैं, मगर करंट उसमें नहीं लगते, और जंगली सुअर को बचाने के लिए पटाखे का इस्तेमाल करते हैं, और झुंड में जाते हैं, अकेला नहीं जाते हैं, ताकि झुंड को देख के वो जानवर भाग जाए।
हाँ, काफी शक्तिशाली भी होते हैं वैसे वो।
जी जी जी
जी जी, तो जंगल के पास रहने का आनंद भी है और उसकी अपनी समस्याएं
भी है। आनंद
भी है,
और हमारे आसपास वहाँ पर बहुत अच्छे मंदिर हैं, शंभू शिवलिंग है, वहाँ पर पहाड़ी पाठ देव स्थल है, मेला भराता है दोनों समय में, शिवरात्रि में और माघ पूर्णिमा में।
बहुत, अभी तो नवरात्र आ रही होगी, उसमें भी अभी तो खैर कोरोना की वजह से नहीं,
सुंदर नजारा होता,
कोरोना काल में अभी थोड़ी दिक्कत होगी।
जी जी जी
जी, योगेश सारवा जी, आपने कहा आप सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, तो किस तरह के सामाजिक कार्य आप करते हैं?
मैं सामाजिक कार्यों में जिस तरह से गांव में कई तरह से आयोजन होता है
जी,
जिस तरह से साफ सफाई की व्यवस्था है, और गांव में सामाजिक चेतना है छुआछूत के प्रति और अन्य कुरूतियों के प्रति, लोगों को हम लोग सामाजिक संगठन के द्वारा जागरूक करते रहते हैं समय समय पर।
हाँ।
और बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो हम लोग संगठन के माध्यम से चलाते हैं, चूंकि हमारा रेडियो श्रोता संघ एक परिवार है
जी।
तो समय समय पर अपने संघ के द्वारा भी हम लोग जागरूक करते रहते हैं। अभी कोरोना काल के दौरान हमने पंचायत से मिलकर कोरोना को वैक्सीन के बारे में बहुत से लोगों को जागरूक किया, सोशल मीडिया के माध्यम से स्वयं घर घर जाके आप कोरोना का इंजेक्शन लगवाइए, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत सी अफवाहें कोरोना के बारे में चल रही थी, तो हमने सामाजिक चेतना के द्वारा दूर करने का प्रयास किया।
तो ये बहुत अच्छा काम किया है। और जैसे धार्मिक विषयों के बारे में आप बात कर रहे थे, तो
जी,
आपने कहा कि संचालन भी करते हैं, तो आप किस किस चीज का संचालन करते हैं?
जी जी जी, मुझे बचपन से गाने का शौक था, और चूंकि मेरे पिताजी अच्छे के रामचरितमानस के गायक रहे और उसी की पद चिन्हों पर मैं भी रामायण समिति से जुड़ा हुआ हूँ और मैं रामायण मंडली का संचालन करता हूँ। चूंकि हमारी मंडली छत्तीसगढ़ के कोने कोने में सम्मेलनों में और अन्य अवसरों पर जैसे बुलावा होता है तो हम लोग जाते रहते हैं। मैं रामचरितमानस के माध्यम से, रामचरितमानस ऐसा दर्पण है कि आप अनुसरण करोगे तो आपका जीवन अच्छा होगा और रामचरितमानस की एक एक समर्पण भाव आपके जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करती है।
तो जैसे आप बता रहे हैं आपकी मंडली है, आप कुछ लाइनें हमें सुना सकते हैं?
जी 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 जी
जी जरूर, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा।
जी जी, एक लोक भजन है, मैं वो सुनाता हूँ।
जी जी।
अतरे लाल गए भैया फूले लाल गएगा, माटी के चोला पानी में भोरे करी के नाम भुलाएगा, माटी के चोला पानी में भोरे करी के नाम भुलाएगा, गर्भवास में कहे रहे भजू हरी नाम ला, बाहर आए कामा भुलाए नहीं भजे प्रभु राम ला, मुक्ति के मार्ग तह बना ले, मुक्ति के मार्ग तह बना ले, भज ले सिया राम ला, माटी के चोला ला पानी में भोरे हरी के नाम भुलाएगा, माटी के चोला ला पानी में भोरे हरी के नाम भुलाएगा।
बहुत सुंदर। और माटी का चोला, सच में बहुत ही अच्छा आपने ये भजन गाया योगेश सारवा जी। जी, और ये सच्चाई है कि आप रेडियो से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, हर प्रोग्राम में आपके नाम आते हैं, तो ये लगाव आपको कब से हुआ, हम ये जानना चाहेंगे?
क्योंकि मेरा बचपन रेडियो, जब मेरा आँख खुला और मैं जब दुनिया में आया तो रेडियो की आवाज़ को ही कान में सुना हूँ, ऐसा शायद मेरा अंदाज है। क्योंकि मेरे पिताजी बहुत अच्छे श्रोता रहे हैं, चूँकि पत्र व्यवहार नहीं करते थे, रेडियो सिलोन इंदौर भोपाल ये सुनते थे, उसी समय से मैं रेडियो सुनते आ रहा हूँ। क्योंकि मैं जब छठवीं क्लास में पढ़ता था उसी समय से आकाशवाणी रायपुर में जो बच्चों का कार्यक्रम आता है वहाँ से मैंने पत्र लेखन का काम चालू किया और जब नाम आता था तो बड़ी खुशी होती थी और सीना गर्व से फूलता था कि आज मेरा नाम रेडियो में आया है, मतलब एक उपलब्धि होती थी रेडियो में नाम आना। इस तरह से चल पड़ा कारवा और आज तक मैं पत्र लेखन के माध्यम से लिखते रहता हूँ। अभी भी मेरे पास 1500 पोस्ट कार्ड है, चूंकि आजकल तो अब सोशल मीडिया के माध्यम से ईमेल और अन्य माध्यम से फरमाइशी जाती है तो पत्र लेखन का काम थोड़ा सा कम हो गया है।
जी, लेकिन पत्र लेखन की बात ही अलग होती थी, उसमें बहुत सारी बातें लोग लिख कर भेजते थे और वो हम संभाल संभाल कर रखा करते थे।
आज तक मेरे पास कम से कम ऐसे 200 पत्र हैं जो जन्मदिन और होली दिवाली जितने भी शुभ अवसरों पर हमारे श्रोता मित्र जो बहुत दूर दूरस्थ अंचलों में रहते थे उन्होंने हमें पत्र लिखा, हमने उनको पत्र लिखा, तो वो लोग भी संभाल के रखे हैं और मैं भी उनके पत्रों को संभाल के रखा हूँ। रंग बिरंगी अलग अलग रंगों में अलग अलग लिखावटों में पत्रों का यहाँ पर मेरे पास संग्रह है।
जी जी। और अरपा रेडियो के बारे में हम जानना चाहेंगे, ये कब से आप सुन रहे हैं और क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं और क्या सुधार चाहते हैं?
अरपा रेडियो से मैं कम से कम 6 महीनों से जुड़ा हुआ हूँ, चूंकि मेरी एक्टिविटी 3 महीनों तक तो मैंने कुछ लिखा नहीं, खाली सुनते गया, समझते गया कि अरपा में कैसे हम भाग ले सकते हैं, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चूंकि 3 महीने के बाद मैंने पूरे जान लिया कि इस तरह से हम पत्र माध्यम से या ईमेल के माध्यम से भेजते हैं, चूंकि मुझे 3 महीने हुआ है, वैसे तो मैं 6 महीने से पहले से सुन रहा हूँ रेडियो अरपा। और अरपा रेडियो के बारे में यही कहना है कि अरपा ने हर श्रोताओं का ख्याल रखा है और अरपा जिस दिन हम नहीं सुनते हैं बिल्कुल अधूरा पल लगता है, हम अन्य आकाशवाणी को सुन नहीं पाते क्योंकि हम अरपा से जुड़े हुए हैं और अरपा ऐसा लगता है कि हम अरपा के ही परिवार हैं।
बिल्कुल, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं।
और अर्पण ने कभी हमें गम और कभी हमें ऐसे निराशा में हमें डुबोया नहीं है, सदा ही अच्छा स्वस्थ मनोरंजन किया है और साथ साथ ज्ञानवर्धक सूचना अच्छा मनोरंजन के ऊपर खरा उतरने का प्रयास किया है और आगे भी अर्पा अच्छे से अच्छे कार्यक्रम हमें देती रहेगी, ऐसी अपेक्षाएं हैं।
शुक्रिया हौसला अफजाई करने के लिए, निश्चित ही अर्पा रेडियो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। तो योगेश जी, अब हम अपने कार्यक्रम के लास्ट में हैं और हम एक ऐसा फनी से कुछ क्वेश्चंस करते हैं
जी।
मतलब एक
जी।
शब्द में आप आंसर दीजिएगा। करूं
जी?
सबसे अच्छा फूल कौन सा लगता है आपको?
गेंदे का फूल।
क्यों?
मुझे बहुत अच्छा लगता है और जिस तरह से उसमें गुच्छे रहते हैं उसी तरह से हमें भी समूह में रहना चाहिए, गुच्छे में रहना चाहिए, तभी संगठन और हमें मजबूती आएगी।
क्या बात है। और सबसे अच्छा फल?
आम।
फलों का राजा आपको पसंद है जी। आपको लगता है जीवन में सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है?
रेडियो।
क्या बात है। सबसे अच्छा गीत कौन सा लगता है आपको? किस सोच में पड़ गए?
बहुत से गीत हैं।
कोई एक गीत जो बार बार सुनने को मन करता है?
फिल्म काजल का गीत।
कौन सा?
मेरे रोम रोम में बसने वाले राम।
क्या बात है, वो आपने कॉलर ट्यून बना रखी है अपनी।
जी
जी जी। और लास्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छी हीरोइन कौन सी लगती है फिल्म की?
मीना कुमारी।
चलिए, बहुत सारे ऐसे फनी से क्वेश्चंस हमने इसलिए किए कि थोड़ी सी रोचकता आए जीवन में। आप भी, कोरोना काल है, सभी को भय है, थोड़ा सा डर है और सब लोग समझते हैं थोड़ा सा हम बंधे हुए हैं, तो हमारे अगर कुछ बातचीत से रोचकता आ जाए। योगेश सारवा जी, आपने रेडियो अर्पा के लिए इतना वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, नई नई जानकारियां दी गांव के बारे में, अपने बारे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।
शुक्रिया।
सप्ताह के श्रोता, इस कार्यक्रम में आज हमारे श्रोता मेहमान थे अर्पा रेडियो के हमारे श्रोता साथी योगेश सारवा, जिनसे आज बातचीत की मीनू सिंह ने।
सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।